Adam Grant Stadler. Sri Narada Uvacha.
Sri Narada Uvacha.
Guhesu Avastito Rajam.
Guhesu Avastito Rajam.
Kriya Kurvanta Pochita.
Kriya Kurvanta Pochita.
Vasudeva Kamusaksha.
Vasudeva
अवस्थित रुककर गृहस्थ सामान्यतया अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ घर पर रहा करता है। राजन हे राजा, क्रिया कार्य कुर्वन करते हुए यथोचित उपयुक्त वासुदेव भगवान वासुदेव को अर्पणम अर्पित करना साक्षात प्रत्यक्ष उपासित पूजा करे महामुनि महान भक्तों को। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्लोक प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भलीभांति सिखा जा सकता है। तात्पर्य, गृहस्थ जीवन की रूपरेखा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण करने की होनी चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः, स संन्यासी च योगी च न निरागिर न चाक्रियः। जो अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहता है और जो करणीय है उसे करता है, वह सन्यासी है और वही असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। कोई चाहे ब्रह्मचारी के रूप में कार्य करे या गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी के रूप में, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की तुष्टि के लिए ही कर्म करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नारद मुनि पहले ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के लिए जीवन उद्देश्यों का वर्णन कर चुके हैं। अतएव अब वे यह बता रहे हैं कि गृहस्थ को किस तरह रहना चाहिए। मूल उद्देश्य तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करना है। परमेश्वर को तुष्ट करने की विधि को यहाँ पर वर्णित साक्षात उपासित महामुनि से सीखा जा सकता है। महामुनि शब्द महान संत पुरुषों या भक्तों को बताता है। संत पुरुष सामंत या मुनि कहलाते हैं, जिसका अर्थ है दिव्य कार्यों से प्रयोजन रखने वाले विचारवान दार्शनिक। महामुनि सूचक हैं उन व्यक्तियों का जिन्होंने न केवल जीवन लक्ष्य का अध्ययन कर लिया है, अपितु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को तुष्ट करने में वास्तव में लगे हुए हैं। ये लोग भक्त कहलाते हैं। भक्तों की संगति किए बिना वासुदेवार्पण की विधि नहीं सीखी जा सकती, जिसका अर्थ है वासुदेव या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करना है। भारत में इस विधि का कड़ाई से पालन होता है। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व मैंने बंगाल के गांव तथा कलकत्ता के बाहरी भागों में लोगों को नित्य प्रति अपना सारा काम समाप्त करने के बाद या संध्या के समय सोने से पूर्व श्रीमद् भागवत का श्रवण करते देखा है। प्रत्येक व्यक्ति को भागवत का श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक गांव में भागवत कक्षाएं चलती थी, जिससे लोगों को श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता था, जो जीवन लक्ष्य के बारे में सब कुछ बताता था। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपप्रामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽयं श्रीगुरो श्रीतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विशवानसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो मावदानाय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरति से नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने गृहस्थ जीवन के संबंध में नारद मुनि से प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर सभी को जानना आवश्यक है। तो नारद मुनि जब युधिष्ठिर महाराज के राजप्रसाद में गए हुए थे, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने इस अवसर का लाभ उठाया। जब कोई साधु पुरुष किसके घर पर आता है तो गृहस्थ को इस तरह लाभ उठाना चाहिए। साधु पुरुष का आदर सत्कार करने के उपरांत उनसे आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे कि गृहस्थ का लाभ होता है। तो युधिष्ठिर महाराज यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, महाभागवत भक्त थे, और भगवान कृष्ण को किस प्रकार संतुष्ट करना चाहिए वो जानते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के प्राण थे। जिस समय महाराज युधिष्ठिर ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण अब धराधाम पर नहीं है, तो भगवान कृष्ण के विरह में युधिष्ठिर महाराज इतने व्याकुल हो उठे कि एक क्षण के लिए भी राजकार्य चलाना, गृहस्थ जीवन में रहना उनके लिए संभव नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने के उपरांत युधिष्ठिर महाराज ने यह निश्चय किया कि अब वो भी नहीं रहेंगे, कृष्ण के बिना उनका जीवन धारण करना संभव नहीं था। यही भक्त का कृष्ण के प्रति प्रेम होता है। प्रेम के कारण भक्त का भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि भगवान के बिना जीवन धारण करना उनके लिए असह्य हो उठा था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने अपना राज्य त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया, और किसी को कुछ कहे बिना वो परिवार राज्य त्याग करके चले गए। महाराज परीक्षित को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और राज्य छोड़कर चलेगा। तो इससे पता चलता है कि महाराज युधिष्ठिर ना तो अपने राज्य के प्रति आसक्त थे, ना तो अपने परिवार के प्रति आसक्त, ना राज ऐश्वर्य के प्रति आसक्त, किसी के प्रति आसक्त नहीं थे। यद्यपि वो राज कार्य चला रहे थे, परिवार में रह रहे थे, किंतु अनासक्त भाव से। एकमात्र आसक्ति भगवान कृष्ण के प्रति थी, जिसके कारण कृष्ण के बिना उनके लिए रहना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने तुरंत राज ऐश्वर्य राज्य परिवार सभी को त्याग दिया। तो वही युधिष्ठिर महाराज अब गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए जीवन में, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, किस प्रकार गृहस्थ का आदर्श जीवन व्यतीत कर सकता है, इसके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। जबकि इसका उत्तर उनको पता है, वो जानते हैं, किंतु जगत के कल्याण के लिए वो इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं, जिससे कि जगत के सारे गृहस्थ इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा है कि हम अपने को इसमें अंतर्भुक्त करते हैं सारे गृहस्थों में, जिस प्रकार साधारण गृहस्थ लोग अपने जीवन के लक्ष्य क्या हैं नहीं जानते, उनको क्या कर्म करना चाहिए वो नहीं जानते, कभी कभी अज्ञानतावश ऐसे कुछ गृहस्थ होते हैं जो सोचते हैं वही कर्म करते हैं और जो भगवान की सेवा करते हैं वो कर्म नहीं है। कभी कभी ये लोग आकर भक्त लोगों से पूछते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, हम लोग कर्म करते हैं तो आप लोग कर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये कर्म क्या है हमको पता नहीं है, केवल इसको बंद करना उसको चालू करना। तो उनको पता नहीं है कि वस्तुतः जीवन में क्या कर्म करना चाहिए गृहस्थ, जीवन का लक्ष्य क्या है उनको पता नहीं। ये लोग सोचते हैं केवल अर्थ उपार्जन करना और परिवार का भरण पोषण करना ही जीवन का लक्ष्य है और इसी को कर्म मानते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं ऐसे गृहस्थों के लिए जो जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते, और उन गृहस्थों में वो अपने को अंतर्भुक्त करते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम गृहस्थ लोग जो जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते हैं, युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे लोग, दूसरे गृहस्थ लोग जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते हैं हम जानते हैं, ऐसा नहीं कह रहे, वो दूसरे गृहस्थों में भी अपने को अंतर्भुक्त करते हैं विनम्रता बस, कि दूसरे गृहस्थ लोग ये ना सोचे कि युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़े हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो कहते हैं कि जीवन के लक्ष्य से रहित और घर पर रहने वाले लोग, घर पर रहने वाले लोग वेदों के अनुसार सरलता से किस तरह मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इसका मार्ग आप बताइए। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था युधिष्ठिर महाराज का, कि जीवन के लक्ष्य को हर व्यक्ति को जानना चाहिए, वो किस लिए इस भौतिक संसार में उसने जन्म लिया है और जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए और किस प्रकार इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए उसको मुक्त होना चाहिए। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लोग दुखों से मुक्ति के लिए प्रश्न करते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, किसी साधु पुरुष से मिलते हैं तो कैसे हमारा दुख दूर होगा, इसके लिए हम प्रश्न करते हैं, और जो दुख सामान्यतया अपने कर्म फलों के अनुसार आता रहता है, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार हम इस संसार में दुख भोग करते रहते हैं, और इस प्रकार हम नया नया कर्म करते रहते हैं, पुराने कर्मों का फल भोग करते हुए नए कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और इस प्रकार कर्म बंधन में हम अनादिकाल से बंधे हुए हैं, उससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं जानते, जिसके कारण केवल इस जीवन में नहीं बार बार इस संसार में जन्म ग्रहण करके हमें दुख भोग करना ही, ये नहीं है कि अब दुख आया है अब दुख से मुक्ति का उपाय पूछ लें और पुनः हम सुखी हो जाएं। संसार में ऐसा नहीं होता है, एक दुख के बाद दूसरा दुख आता है और इस जन्म के बाद दूसरा जन्म आता है और हर जन्म में हमें दुख अपने कर्म के फलों के अनुसार भोग करना है। तो एक दुख से मुक्ति का उपाय जान लेने पर दुख का अंत नहीं हो जाता, या मृत्यु भी दुख का अंत नहीं है, मृत्यु के बाद पुनः हमें जन्म लेना है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इस प्रकार प्रश्न करेगा कि सदा के लिए वो कैसे दुख से मुक्त हो सकता है। सदा के लिए दुख से मुक्त होना, इस विधि को जानना, ये बुद्धिमानी का कार्य। तो युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को जाने और इस संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाए, उसका मार्ग क्या है। तो नारद मुनि इसका उत्तर दे रहे हैं इस श्लोक में, कहते हैं गृहेषु अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन यथोचिताः। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि व्यक्ति को, विशेष रूप से गृहस्थों के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि इसके पूर्ववर्ती अध्याय में नारद मुनि ब्रह्मचारी का कर्तव्य, वानप्रस्थी का कर्तव्य और सन्यासी का कर्तव्य बता चुके हैं। अब इस अध्याय में गृहस्थ के कर्तव्यों को बता रहे हैं। तो गृहस्थ को गृहस्थ जीवन में क्या करना है और कैसे रहना है, यह जानना सभी के लिए आवश्यक है। तो कहते हैं गृहेषु अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन यथोचिताः। तो नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, गृहस्थ को घर पर रहते हुए कार्य करना चाहिए, यथोचित कार्य करना चाहिए, वर्ण और आश्रम के अनुसार जिस प्रकार का कार्य उचित है गृहस्थ के लिए ऐसे कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई गृहस्थ जीवन में हो और उसका कोई कार्य नहीं, वो ऐसे बैठा कुछ नहीं कर रहा, तो ये उचित नहीं है। वो कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, जिससे कि परिवार का निर्वाह हो। परिवार के निर्वाह के लिए धन उपार्जन करना ये कोई दोष नहीं है, इसको करना आवश्यक है, किंतु उसके प्रति आसक्त होना ये दोष है कि अधिक से अधिक धन उपार्जन करना, केवल धन के प्रति आसक्त होना ये दोष माना गया। परिवार के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए धन उपार्जन करना हर गृहस्थ का कर्तव्य है। जितना आवश्यक है कम से कम उतना धन उपार्जन करने के लिए गृहस्थ को कार्य करना चाहिए, किंतु धन के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए या परिवार के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। एकमात्र आसक्ति भगवान कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। यही अनासक्त भाव गृहस्थ को विकसित करना है, घर पर रहते हुए और सांसारिक कार्य करते हुए अनासक्त रहना है। अनासक्त रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ कर्म नहीं करेंगे या अर्थ उपार्जन नहीं करेंगे, क्योंकि वो माया है। कभी कभी लोग कहते हैं अर्थ उपार्जन माया है, हम तो कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं इसलिए हम नहीं करेंगे, ये नहीं है। अर्थ उपार्जन आवश्यक है जीवन धारण के लिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, जीवन धारण के लिए अर्थ की आवश्यकता है, किंतु अर्थ हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये समझना चाहिए कि अर्थ उपार्जन हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, हमारे जीवन की आवश्यकता है। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि गृहेषु अवस्थित घर पर रहते हुए राजन क्रिया कुर्वन यथोचिता, गृहस्थ को यथोचित कर्म करना चाहिए अर्थ उपार्जन के लिए। जैसे कोई ब्राह्मण है उसको ब्राह्मण का कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं करता, ब्राह्मण भगवान पर निर्भर रहता है और भिक्षा वृत्ति अवलंबन करता है, दूसरों से मांगता है या कोई कुछ दान देता है उसी से जीवन निर्वाह करता है। किंतु वो जाता है भिक्षा के लिए और भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हुआ उसी से संतुष्ट रहता है। तो क्षत्रिय राज कार्य में रहता है, राज्य पालन में, वैश्य कृषि गोरक्षा वाणिज्य में, और वैश्य नौकरी करता है। तो वो दूसरों की सेवा करता है, कुछ अर्थ उपार्जन करता है। जबकि कलयुग में ये सब वर्णाश्रम व्यवस्था भ्रष्ट हो चुका है, अब नहीं है, इसलिए सभी अब नौकरी के लिए प्रयासरत है। इसलिए लोग बेकार होते हैं, नौकरी नहीं मिला बेकार, कोई कार्य नहीं है, बैठे हुए हैं। और बेकार बैठेगा व्यक्ति, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। अगर कोई काम नहीं है तो वो चोरी डकैती बदमाशी करने के लिए सोचेगा व्यक्ति। इसलिए आजकल यही बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था समाप्त हो चुका है। प्राचीन काल में कोई बेकार नहीं रहता था, हर व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कुछ न कुछ कार्य करते रहते थे। किंतु आजकल ऐसा नहीं है, सब नौकरी पर निर्भर करते हैं। यहाँ तक कि जो कृषक गांव में कृषि कार्य करता था वो कृषि छोड़कर नौकरी के लिए शहर में आता, तो शस्य उत्पादन बाधा प्राप्त होता। तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं यथोचित, जो जिस काम के लिए उपयुक्त है उसको उसी प्रकार कार्य करना चाहिए, दूसरों का अनुकरण करना नहीं चाहिए। स्वधर्म निधनं श्रेय पर धर्म भयाव, भगवान कृष्ण कहते हैं अपने धर्म में रहना चाहिए, स्वधर्म अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म में रहना चाहिए और कर्म करना चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान की कृपा से जो भी प्राप्त हुआ उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। वासुदेवार्पण साक्षात उपासित महामुनि, तो नारद मुनि कहते हैं कि जब व्यक्ति धन उपार्जन करता है तो उसका अर्थ क्या होता है, कि धन उपार्जन करने का अर्थ यह नहीं है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करे और जितना भी धन कमाए स्वयं उसका भोग करे, यह धन उपार्जन का अर्थ भी नहीं है। धन उपार्जन करना है उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, धन उपार्जन करने के लिए, और अपने कर्म को कृष्णार्पण करना होता है। एक आदर्श गृहस्थ के लिए, एक आदर्श गृहस्थ यदि अपने जीवन के लक्ष्य को समझता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, संसिद्धि हरितोषणम, कि जीवन की सिद्धि उसी में प्राप्त होती है जब हम भगवान हरि कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, अपने कर्म से अपने कार्य से भगवान को संतुष्ट करते हैं। तो हम कैसे संतुष्ट करेंगे भगवान को, जब हमारा जीवन भगवान के लिए अर्पित होगा, हमारा जीवन हमारा धन हमारा परिवार सब भगवान की सेवा के लिए अर्पित होगा, तो भगवान इससे संतुष्ट होता है। तो एक आदर्श गृहस्थ अपने को भगवान क- कृष्ण के चरणों में समर्पित करता है, और केवल स्वयं नहीं अपने परिवार को भी भगवान के चरणों में समर्पित करता है, और अपने धन को भी भगवान के चरणों में समर्पित करता है। मानस देह गेह जाकिछु मोर अर्पिलु त्वा पदे नंद किशोर। तो भक्त भगवान से यही कहता है, नंद नंदन श्री कृष्ण, मानस मेरा मन आपके चरणों में समर्पित है, मेरा शरीर आपकी सेवा के लिए समर्पित है, मेरा गृह घर आपकी सेवा के लिए समर्पित है, मेरा परिवार आपकी सेवा के लिए समर्पित है, और मेरा धन आपकी सेवा के लिए समर्पित है। यह नहीं है कि गृहस्थ धन उपार्जन करें और आवश्यकता से अधिक भोग के लिए अपने धन का उपयोग करें। कभी कभी देखा जाता है कि लोगों के पास बहुत धन होता है और वो नहीं जानते हैं उसका उपयोग कैसे करें, क्योंकि अधिक धन है इसलिए वो अधिक खा नहीं सकते, जितना पेट में पेट भरेगा उतना ही खा सकते हैं। ये नहीं कि मेरे पास अधिक धन है हम अधिक खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जीवन की जो सर्वनिम्न आवश्यकताएं हैं उसको तो हम ग्रहण करते हैं, किंतु अधिक धन है क्या करेंगे, लोग शराब पीते हैं, शराब में धन अपव्यय करते हैं, या दुसंग में नारी संग में धन अपव्यय करते हैं, या भोग में धन को लगाते हैं, ये धन का अपव्यय है, क्योंकि धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी देवी भगवान कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए, लक्ष्मी देवी को कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए, तब जाकर वो धन सफल होता है। तो गृहस्थ को क्या करना चाहिए, वासुदेवार्पणम, वो परिश्रम करके जो भी धन उपार्जन करता है उसको भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तो कोई सोचेगा कि जितना धन हम कमाते हैं सब भगवान को दे देंगे तो हम कैसे चलेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति को कैसे धन का विभाजन करना है। तो शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने जो प्रश्न पूछा है वो कह रहे हैं कि वेदों के अनुसार गृहस्थ को कैसा आचरण करना चाहिए, ये मनमाने ढंग से नहीं, वेदों में जैसा बताया गया है ऐसे कैसे आचरण करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि व्यक्ति जो धन उपार्जन करता है उसका 50 भाग कृष्ण की सेवा में उसको लगाना चाहिए, और जो 50 भाग बच जाता है, ये आदर्श गृहस्थ जीवन की बात कही जा रही है कि और जो 50 भाग हैं उससे 25 भाग वो भविष्य के लिए उसका संचय करना चाहिए, और 25 भाग से अपना परिवार चलाना चाहिए, जिससे गृहस्थ इंद्रिय भोग के लिए उसका धन नहीं बचेगा। जब अधिक धन है व्यक्ति इंद्रिय भोगों में लगाता है, और जब भगवान की सेवा में लगा देगा तो इंद्रिय भोगों में लगाने के लिए उसका धन नहीं रहेगा उसके पास, केवल परिवार के भरण पोषण के लिए जितना आवश्यक है उसके लिए वो धन का उपयोग करेगा। तो नारद मुनि कहते हैं कि गृहस्थ को जीवन धारण करने के लिए जितनी सर्वनिम्न आवश्यकता है उसी को ग्रहण करना चाहिए। जैसे जीवन धारण करने के लिए वस्त्र की आवश्यकता है, खाद्य की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, और बच्चों का देखभाल करना, स्त्री बच्चों का देखभाल करना यह आवश्यक है, तो उसके लिए जितना धन आवश्यक है उतना ही रखना चाहिए। और जो इंद्रिय भोग के लिए हम अनावश्यक रूप से धन खर्च करते हैं, उसके बिना हमारा चल सकता है, किंतु अनावश्यक रूप से हम धन खर्च करते रहते हैं। प्राचीन काल में, आजकल जिस प्रकार हम अपने जीवन में इसको आवश्यक मानते हैं, प्राचीन काल में इसकी आवश्यकता नहीं थी। जैसे आजकल टीवी के बिना हमारे गृहस्थ लोग नहीं रह सकते, टीवी की आवश्यकता नहीं है जीवन में, टीवी के बिना व्यक्ति जीवन धारण कर सकता है। कोई कह सकता है कि हमें थोड़ा समाचार जानना, और समाचार जानने के लिए हम न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और समाचार आप नहीं भी जाने फिर भी आप जीवन धारण कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जीवन धारण करने के लिए समाचार की आवश्यकता। प्राचीन काल में समाचार पत्र की आवश्यकता नहीं थी और लोग बहुत सुख में जीवन निर्वाह कर रहे थे, इतनी अशांति नहीं थी समाज में। आजकल लोग टीवी से देखकर चोरी कैसे करना होता है, डकैती कैसे करना होता है, और तरह तरह के कुकर्म कैसे करना होता है सब टीवी से सीखते हैं, फिल्म से सीखते हैं और करते हैं। तो ये सब समाचार पत्र में, आजकल भागवत कथा हो रही है, कितना समाचार आ रहा है, कहीं अगर आता भी हो कहीं कोने में डाल दिया होगा छोटा समाचार, और कहीं रेप हो गया तो फर्स्ट पेज में बड़े बड़े अक्षर में आएगा समाचार पत्र। तो इसको लोग पढ़ कर के लोग सीखते हैं कैसे करना है ये सब अपराध, इसी को महत्व दिया जाता है, टीवी में दिया जाता है, समाचार पत्र में दिया जाता है। अगर लोगों को अच्छा समाचार दिया जाए जिससे कि लोगों के जीवन धारण पद्धति में उन्नति हो, लोग अच्छा सोचें, अच्छा कार्य करें, अच्छे कार्य करने के लिए कुछ प्रेरणा प्राप्त हो, इसके लिए समाचार पत्र या टीवी का प्रयोग होना चाहिए। किंतु इसके विपरीत दूसरे कार्य के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम देखते हैं इससे आप जितना इसमें अच्छाई है बुराई उससे अधिक है। थोड़ा बहुत हमें समाचार मिलता है किंतु उससे बुराई अधिक होती है समाज में। तो इसका हमें देखना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या आवश्यक है, और जो आवश्यक अनावश्यक रूप से हम उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही लक्ष्मीपति है। वो पैसे का, धन का उपयोग उनकी सेवा के लिए होनी चाहिए, इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। और भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए उसके लिए हम अपने ढंग से सोच नहीं सकते। तो कहा गया है कि उपासित महामुनि, कि महामुनि भक्त जो हैं, जो भगवान के महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके निर्देशों के अनुसार हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा कैसे करने पर भगवान संतुष्ट होंगे हमें सीखना चाहिए। इसलिए गुरु या साधुओं के निर्देश के अनुसार गृहस्थ को अपना जीवन धारण करना चाहिए, धन का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उसका जीवन सुखमय हो सकता है और मृत्यु के पश्चात वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो हम देखते हैं कि इतिहास में जितने भी महान भक्त हुए हैं तो उनमें से अधिकांश भक्त गृहस्थ थे। जैसे हम ध्रुव महाराज का नाम लेते हैं, ध्रुव महाराज गृहस्थ थे। प्रहलाद महाराज का नाम लेते हैं, प्रहलाद महाराज गृहस्थ थे। अम्बरीश महाराज का नाम लेते हैं, अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे। बलि महाराज का नाम लेते हैं, बलि महाराज गृहस्थ थे और ये सब राजा थे, राज कार्य संभाल रहे थे, फिर भी भगवान के परम भक्त थे। आजकल हमारे गृहस्थ कहते हैं कि महाराज हमारे पास समय नहीं है, हम आज क्लास में नहीं आ पाए, हमारा ये काम था वो काम था, तरह तरह का काम निकालते हैं, किंतु भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आज कितने हमारे गृहस्थ भक्त आए हैं, बहुत कम लगता है, रविवार भी समय नहीं है उनके पास। तो ये हमारी अवस्था है। तो जो ऐसे महान भक्त हुए, राज कार्य संभालते हुए भी भगवान के परम भक्त थे, भगवान की सेवा में समय व्यतीत करते थे, मुनि ऋषियों से भगवान की कथा का श्रवण करते थे। अम्बरीश महाराज तो 24 घंटे भगवान की सेवा में समय व्यतीत करते थे, यहां तक कि राज कार्य के लिए भी वो उतना ध्यान नहीं देते थे, जबकि उनका राज कार्य चलता था, किंतु राज्य की रक्षा कैसी होनी चाहिए उसके लिए वो चिंतित नहीं थे। और ये इतने समर्पित भक्त थे अम्बरीश महाराज, क्योंकि वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे हुए थे, इसलिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उनको दे दिया था। तो अम्बरीश महाराज के राज्य की रक्षा उनकी सेना नहीं कर रही थी, सुदर्शन चक्र स्वयं कर रहे थे, भगवान के सुदर्शन चक्र। तो भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्तों को ये दृढ़ विश्वास रहना चाहिए भगवान पर। अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पावन, भगवान कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास भक्त को होना चाहिए। जो शरणागत भक्त होता है उसमें उसके 6 लक्षण होते हैं, आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य विवर्जनम रक्षयिष्यति विश्वास गुप्तृते वर्णम तथा, कि कृष्ण की सेवा के लिए जो अनुकूल है उसी को केवल ग्रहण करना चाहिए, कृष्ण की सेवा के लिए जो प्रतिकूल है उसका, जो अपना अत्यंत प्रिय होने पर भी उसको त्याग देना चाहिए। यदि कृष्ण की सेवा के लिए कोई चीज प्रतिकूल है किंतु हमारा बहुत प्रिय वस्तु है, फिर भी उसको त्याग देना चाहिए। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि हम चाय छोड़ नहीं पाते हैं, तो उनका प्रिय तब कौन है, कृष्ण प्रिय है ना चाय प्रिय है? तो जिसका जिसको कृष्ण प्रिय है उसको चाय प्रिय नहीं होगा, मछली मांस प्रिय नहीं होगा, वो त्याग देगा। तो ये जो प्रतिकूल है कृष्ण की सेवा के लिए, चाहे हमारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो उसको त्याग देना चाहिए, ये शरणागत भक्त का लक्षण है। और कृष्ण की सेवा के लिए जो अनुकूल है हमारा प्रिय नहीं है, हम नहीं चाहते हैं किंतु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है, तो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे हम जप करना नहीं चाहते हैं किंतु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है, हम मंदिर आना नहीं चाहते हैं किंतु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है, भक्तों का संग करना नहीं चाहते हैं किंतु यह आवश्यक है तो इसको करना चाहिए, चाहे हमको अच्छा लगे या ना लगे। जैसे भगवान का नाम जप करना, उसके प्रति हमारा उतना आग्रह नहीं हो सकता प्राथमिक स्तर पर, किंतु यदि हम नियम पूर्वक भगवान का नाम जप करते रहेंगे, प्रतिदिन 16 माला जप करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे हृदय में जो मलिनता है वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी, हमारे पाप कर्म के फल नष्ट हो जाएंगे और चेतना सब शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, तो उस नाम करने के लिए, जप करने के लिए हमारा आग्रह और बढ़ता रहेगा, जाएगा। पहले इच्छा नहीं होती थी, अब और इच्छा होने लगेगी, अधिक से अधिक जप करने के लिए हम चाहेंगे। तो यही आवश्यक है कि जो भक्ति के लिए आवश्यक है उसको करते रहना चाहिए, प्राथमिक अवस्था में, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि वही शुद्ध करने का उपाय है। तो इसलिए कहा गया कि जो अनुकूल है कृष्ण की सेवा के लिए, हमें अच्छा नहीं लगने पर भी उसको ग्रहण करना चाहिए, और कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास भक्त को रहना चाहिए। कृष्ण पर हमें पूर्ण निर्भरशील होना चाहिए, हर स्थिति में, हर विपत्ति में भक्त को कृष्ण के ऊपर निर्भरशील होना चाहिए, और ये दृढ़ विश्वास रहना चाहिए कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। आनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम रक्षयिष्यति विश्वास गोपतृते वरणम तथा। और भगवान श्री कृष्ण हमारा पोषण करेंगे, ये दृढ़ विश्वास भी भक्त को होना चाहिए। भक्त अपने भविष्य के लिए कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए कि हमारे भविष्य में क्या होगा, कैसे हम जीवन धारण करेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा, कहाँ से धन आएगा, क्या होगा, इसके लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हम कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, कृष्ण अवश्य हमारा भार ग्रहण करते हैं। अनन्य चिंतयन्तो मां ये न परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूँ, जो अनन्य रूप से मेरा ही चिंतन करते रहते हैं, मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ, अर्थात उनके पास जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता हूँ, और उनके पास जो अभाव है उसको पूर्ण करता हूँ। तो भगवान अवश्य अपने भक्तों की देखभाल करते हैं, इसलिए भक्तों को कभी अपने भविष्य के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, और कभी विपत्ति में कोई पड़ा हुआ है तो उसको भी भगवान के ऊपर निर्भरशील होना चाहिए, और दृढ़ विश्वास के साथ कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं जीवन में सफल होने की कला क्या है, तो कहते हैं कि मेरा भक्त बनो और सदा सर्वदा मेरे ऊपर निर्भरशील रहो, मेरे ऊपर निर्भर करो और मेरी सुरक्षा में कार्य करो। तो ये जीवन में सफल होने की कला है कि हर स्थिति में हम कृष्ण पर निर्भरशील रहें, उनकी सुरक्षा में कार्य करें और उनका भक्त बने, और भक्त को सदा सर्वदा विनम्र होना चाहिए, कभी भी अहंकार को मन में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में, केवल गृहस्थ जीवन में क्या है, ब्रह्मचारी सन्यासी जीवन में भी, हर जीवन में अहंकार आ जाता है। जब हमें कुछ लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, कभी धन प्राप्त हो जाता है, तो अहंकार आ ही जाता है, अहंकार रहता है, मिथ्या अहंकार। तो ये अहंकार हमारे भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है, इस अहंकार के कारण हम अपने को भगवान के चरणों में और भक्तों के चरणों में समर्पित नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारी भक्ति बाधित होती है। इसलिए भक्त को सदा सर्वदा अहंकार को त्याग करते हुए विनम्र रहना चाहिए कि मैं, मेरे पास कोई गुण नहीं है, मेरे पास कोई गुण नहीं है, मैं भक्ति के लिए योग्य नहीं हूँ, इसलिए भगवान कृष्ण के चरणों में, उनके भक्तों के चरणों में बार बार गिरकर हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि कैसे हम भगवान की सेवा में लगे रहें और अपने जीवन को कृष्ण की सेवा के लिए वैष्णव की सेवा में उत्सर्गीकृत करें, उत्सर्ग करें। जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, ये हमारे मार्ग में ये दोनों बहुत इसकी दोनों बड़ी आवश्यकता, कृष्ण की सेवा और वैष्णव की सेवा, ये बहुत आवश्यक है अपने को नम्र रखने के लिए, अहंकार को त्यागने के लिए। तो कृष्ण की सेवा के लिए जो भी अवसर हमें प्राप्त होता है उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ये नहीं है कि हम केवल मंदिर में आए और थोड़ा प्रवचन सुन लें, भगवान का दर्शन करें और चले जाए। भगवान की कथा सुनना चाहिए, यह आवश्यक है, भगवान का दर्शन भी करना चाहिए, किंतु हमें कुछ भगवान के मंदिर में कुछ सेवा भी करनी चाहिए। भगवान ने शरीर दिया है तो ये शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए। जो भी सेवा हमें प्राप्त होती है, चाहे मंदिर में झाड़ू लगाना क्यों ना पड़े, मंदिर में झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना भगवान का, जो भी सेवा मिलता है मांग करके लेना चाहिए हर भक्त। मंदिर के अध्यक्ष के पास आकर उनको पूछना चाहिए, प्रभु मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आप बताइए। तो इससे हमारा हृदय शोधन होता है, शुद्ध होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारा अहंकार दूरीभूत होता है। तो हमें अपना धन कृष्ण की सेवा के लिए देना चाहिए और शरीर को भी लगाना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए। तो इस प्रकार हम धन को शुद्ध कर सकते हैं, हम धन कृष्ण की सेवा के लिए अर्पण करते हैं, और शरीर को शुद्ध कर सकते हैं जब शरीर को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। इससे हमारा अहंकार दूरीभूत हो जाता है। अन्यथा कभी कभी देखा जाता है कोई धन दे देता है मंदिर में भगवान की सेवा के लिए, और वो सोचेगा मैं इतना धन देता हूँ मंदिर में, साल भर इतना धन देता हूँ, मुझसे बढ़कर अधिक कोई नहीं देता है, उसमें अहंकार की वृद्धि होती। या कोई सोचेगा मैं धन देता हूँ मंदिर में भगवान की सेवा के लिए, ये मंदिर वाले मुझे नहीं पूछते हैं, मेरा सम्मान नहीं करते हैं, तो इसमें हम प्रति आशा रखते हैं जो हमने सेवा के लिए धन दिया है उसके बदले हमें क्या मिलेगा, तो ये व्यवसाय हो गया। इसमें नम्रता नहीं है, इसलिए कभी कभी लोग धन देते हैं अपना नाम नहीं बताते, नम्र सेवा करते हैं, भगवान की सेवा के लिए धन देते हैं मंदिर में, अपना नाम नहीं बताते। तो नम्र रहकर जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान उस सेवा को ग्रहण करते हैं। जब भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, तो यहाँ कहा गया कि महामुनि उपासित महा, तो ये भक्त जन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ये महामुनि, ये भगवान के संबंध में जानते हैं, हर समय सोचते रहते हैं, भगवान के तत्व को जानते हैं, उनकी सेवा कैसे होनी चाहिए इसको जानते हैं और दूसरों को बताते हैं। तो ऐसे भक्तों का संग करके उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, जिससे कि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी लोग आते हैं, आकर केवल प्रणाम जानते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज आप थोड़ा कृपा कर दीजिए। तो कृपा केवल पूछने पर कृपा प्राप्त नहीं होती, कृपा प्राप्त होने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, केवल मांगने से कृपा नहीं मिल जाती। कभी कभी लोग आते हैं, महाराज जी हमारे बच्चे पर हाथ थोड़ा रख दीजिए, उसको कृपा मिल जाएगी। तो कृपा का प्राप्त होने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं कृपा प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए और भक्तों की कृपा प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, यह हमें अपने को पूछना चाहिए। तो ये जो सेवा भाव है इसको करना चाहिए और नम्रता के साथ करना चाहिए, जिसके द्वारा जो भी सेवा हम कर सकते हैं अपने समय के अनुसार या समय निकाल करके, अपने परिवार से समय निकाल करके हमें मंदिर में आकर मांगना चाहिए, अध्यक्ष से क्या सेवा हम कर सकें बताइए। और कुछ नहीं है तो हम दूसरे लोगों को कृष्ण के बारे में बता सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, हम जिस किसी को देखें उसको कृष्ण के बारे में बताएं। और यदि हम नहीं जानते हैं कृष्ण के बारे में बताने के लिए, तो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं जो कृष्ण के बारे में बताते हैं, भगवद गीता हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, हम दूसरों को वितरण करें, ये भी बहुत बड़ी सेवा है भगवान की। जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त उनके ज्ञान का वितरण कर रहा है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये ज्ञान यज्ञ कहा जाता है इसको, ज्ञान का वितरण हम स्वयं करें और हम किसको बोलते भी हैं तो वो व्यक्ति सुन करके फिर बाद में भूल जाता है, किंतु यदि हम प्रभुपाद का एक ग्रंथ देते हैं उसको, तो वो व्यक्ति जब तक वो ग्रंथ उसके पास रहेगा वो पढ़ता रहेगा और उस ज्ञान को प्राप्त करता रहेगा और जीवन में अवश्य भक्त बनता रहेगा। इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। हम धन देकर कर सकते हैं, शरीर देकर कर सकते हैं, और मंदिर में कर सकते हैं, बाहर जाकर ग्रंथ वितरण कर सकते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण। अब जैसे ये गीता जयंती का महीना चल रहा है, इसी महीने में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, अब वो एकादशी आ रही है, जिस एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, ये 22 तारीख ना 21 तारीख। तो इस महीने में सब भक्त लोग सारे विश्व में गीता का वितरण कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ इतने भक्त हैं सब, तो ये हमें अपने को पूछना चाहिए कि हमने कितना गीता वितरण किया है, प्रभुपाद के कितने ग्रंथ वितरण किए हैं, कितने लोगों को भक्त बनाया है, कितने लोगों को भगवान कृष्ण के संबंध में बताया है। तो इसलिए गृहस्थ लोगों को मंदिर में आकर सेवा देनी चाहिए और घर पर जब हैं तो घर पर भक्तों को बुला करके घर में सत्संग का प्रोग्राम आयोजन करना चाहिए, और अपने आत्मीय स्वजन बंधु बांधव उनको बुलाना चाहिए घर पर, उनको कृष्ण के बारे में वो श्रवण करेंगे, वे भी भक्त बनेंगे, प्रभुपाद का ग्रंथ वितरण करना चाहिए, जिस किसको देखें उनको कृष्ण के बारे में बताना चाहिए। कई तरह की सेवाएं, इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिर बनवाए हैं सारे विश्व में, किस लिए, सब गृहस्थ लोगों के लिए, ब्रह्मचारी सन्यासी तो घूमते रहते हैं प्रचार के लिए, किंतु गृहस्थ लोग आएंगे मंदिर में भगवान की सेवा करेंगे, उनसे मंदिर से प्रेरणा प्राप्त करेंगे कृष्ण भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। तो नारद मुनि ने जो उपदेश दिया है, ये उपदेश, बहुत सारे उपदेश हैं इस अध्याय में गृहस्थ जीवन के लिए, तो ये तो हम एक ही श्लोक बता रहे हैं, और अगले कई श्लोकों में नारद मुनि कई तरह की बातें कह रहे हैं गृहस्थ लोगों को क्या क्या करना चाहिए। आप लोग श्रीमद् भागवत का पाठ करिए, उससे आप जान सकते हैं कि हमें स्वयं गीता भागवत का अध्ययन करना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। तो हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और उसके साथ साथ दूसरों के जीवन को भी सार्थक कर सकते हैं, उसका जीवन सुखमय कर सकते हैं। और इस प्रकार सदा के लिए हम इस भौतिक संसार के दुखों से भगवान कृष्ण का भक्त बनकर उनकी सेवा करते हुए भौतिक संसार के दुख से मुक्त हो सकते हैं और दूसरों को भी मुक्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।
जय श्री भक्ति गुरु ग्रंथ साहिब महाराज।